आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद नौवां अध्याय श्लोक नंबर 11 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्री भगवान उवाच निबोध तात इदं रीतं ब्रवीमि मा असूयितुं देवं अर्हसि अप्रमेयं वयं भवः ते ततः एषः महर्षिः महामह सर्वे विवसः यस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोधो तातेदं ऋतं ब्रवीमि मासूयितुं देवं अर्हसि प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोध तातेदं ऋतं ब्रवीमि मासूयितुं देवं अर्हसि प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एव महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोध तातेदं ऋतं ब्रवीमि मासूयितुं देवं अर्हसि प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोधतातं ऋतं इदं ब्रवीमि मासूयितुं देवं अर्हसि प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोध तातेदं ऋतं ब्रवीमि मासूयितुं देवं अर्हसि प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच निबोध तातेदं ऋतं ब्रवीमि असुवितं देवं हर्षप्रमेयं भयं भवस्ते तथा समर्षि वाम सर्वे विवसायस्य दिष्टा श्री भगवान उवाच निबोधता तेदंग्रितं ब्रवीमि मसुवितं देवं हर्षस्य प्रमेयं भयं भवस्ते ततये समर्षि काम सर्वे विवसायस्य दिष्टम् निबोधता तेदं ऋतं ब्रवीमि मसुवितं देवं हर्षस्य प्रमेयं भयं भवस्ते ततये समर्षि वाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम् श्रीभगवान् उवाच निबोधता तेदं ऋतं ब्रवीमि मसुवितं देवं हर्षस्य प्रमेयं भयं भवस्ते ततये समर्षि वाम सर्वे विवसायस्य दिष्टं श्रीभगवान् उवाच। परम पुरुष ब्रह्मा ने कहा निबोध ध्यान पूर्वक सुनो तात मेरे प्रिय पुत्र इदं यह रीतं सत्य ब्रवीमि बोल रहा मा मत असुयितुं ईर्षालु देवं भगवान अर्हसि तुम्हें चाहिए अप्रमेयम जो हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से परे हैं वयम हम भवः शिवजी ते तुम्हारा ततः पिता एषः यः महर्षिः नारद वहामः पालन करते हैं सर्वे सभी विवशाः विचलित होने में आसक्त यस्य जिसके दिष्टम आज्ञा। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा हे प्रियव्रत मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो परमेश्वर से ईर्ष्या न करो क्योंकि हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को जिसमें शिवजी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तात्पर्य 12 भक्त महाजनों में 4 महाजन स्वयं ब्रह्मा उनके पुत्र नारद स्वयं मनु तथा शिव जी प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी न घटने वाले हैं। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपाप विद्ध कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि वे भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद्भागवतम में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाला कोई भी कुत्सित कृत्य असर नहीं कर सकता। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वह कोई गलत काम कर सकता है। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए थे, तो वे किसी सनक वश नहीं गए, ये तो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। दरअसल ब्रह्मा तथा अन्य प्रमाणित अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वो भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीतिपूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे ये मेरे पास आ सके। अतः ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु यही समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को पहले यह समझाया कि उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ भी कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। चूंकि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञानुसार प्रियव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि ये उसके शत्रु ऐसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेयस्कर था। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति सुप्रभातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं शक्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। निबोध तातेदं ऋतं ब्रवीमि मासुयितं देवं अहर्षि अप्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी कुछ कहने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, स्वयं मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो ये प्रियव्रत भौतिक संसार से निर्लिप्त थे, वो आसक्त नहीं थे भौतिक संसार के प्रति। तो भौतिक संसार से विरक्त होकर वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए हुए थे और उनके गुरु थे स्वयं श्री नारद मुनि। और नारद मुनि हम लोग जानते हैं कि भगवान के परम भक्त, द्वादश महाजनों में अन्यतम और सारे संसार में वो भ्रमण करते हुए भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति का बहुत बड़े प्रचारक है नारद मुनि। और भौतिक जगत से लोगों को अनासक्त करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार आसक्ति में वृद्धि होगी, नारद मुनि यही उपदेश देते रहते हैं। किस प्रकार भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति वृद्धि प्राप्त होगी, भौतिक संसार से हम अनासक्त रहेंगे, क्योंकि साधारणतः भौतिक संसार में लोग आसक्त रहते हैं, अपने शरीर के प्रति आसक्त, अपने परिवार के प्रति आसक्त, आत्मीय स्वजनों के प्रति आसक्त, धन संपत्ति के प्रति आसक्त, सुख भोग के प्रति आसक्त, ये कई तरह की आसक्तियाँ हैं लोगों के। किंतु ये महाराज प्रियव्रत श्री नारद मुनि के उपदेश से वो अनासक्त हो गए थे संसार के प्रति और भगवान के प्रति आसक्त हो गए थे, इसलिए गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे थे। और नारद मुनि वहाँ उपस्थित थे, नारद मुनि से वो श्रवण कर रहे थे, धार्मिक उपदेशों का श्रवण कर रहे थे प्रियव्रत। किंतु स्वयंभुव मनु जो उनके पिता थे वो चाह रहे थे कि प्रियव्रत तपस्या से लौट आए और राजकाज संभालें, क्योंकि यह आवश्यक था, क्योंकि संसार में राजकाज संभालने के लिए एक राजर्षि की आवश्यकता है जो राजा होते हुए भी ऋषि के समान आचरण करे। तो महाराज प्रियव्रत उसके लिए उपयुक्त थे, पूर्व काल में सब राजर्षि ही होते थे जो राजकाज संभालते थे और जब समय आता था तो राज्य धन संपत्ति परिवार त्याग करके वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। सब ऐसे राजा थे, उनको राजर्षि कहा गया। ये नहीं है कि मृत्यु तक राजगद्दी में लिपट के रहना, ये उनकी उनका अभ्यास नहीं था, जैसे आजकल नेता लोग करते हैं, जब तक मृत्यु नहीं होती है या कोई बलपूर्वक हटाया नहीं जाता है तब तक वो हटना नहीं चाहते, इतने आसक्त। तो स्थिति यह है कि प्रियव्रत नारद मुनि से भगवान के संबंध में ज्ञान उपदेश का श्रवण कर रहे हैं, तो नारद मुनि वहाँ उपस्थित हैं और स्वयंभुव मनु जो प्रियव्रत को मनाने के लिए आए हैं उन्होंने उनको कहा है कि तुम आकर राजकाज संभालो। किंतु महाराज प्रियव्रत अनिच्छुक थे, उनको राजकाज संभालने के लिए फिर संसार में लौटने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी। किंतु अब पिताजी की आज्ञा है, पिताजी चाहते हैं कि वो जाकर राजकाज संभाल संसार में प्रवेश करे, ये पिताजी की आज्ञा है। नारद मुनि संसार से निलुप्त होकर भगवान में आसक्त होने के लिए ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो महाराज प्रियव्रत धर्म संकट में पड़ गए थे। तो इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते किंतु उनकी इच्छा नहीं कि फिर संसार में जाकर फिर राजकाज संभाल, और स्वयं उनके गुरु उनके पास है जो उनको उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार भगवान की सेवा में तल्लीन होना। तो गुरु अपना कार्य कर रहे हैं, ये गुरु का कार्य है, और पिता अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और महाराज प्रियव्रत ये दोनों के बीच में धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि क्या कर रहे हैं इस स्थिति। पिताजी की आज्ञा का पालन करें या नारद मुनि के उपदेश के अनुसार भगवान की भक्ति में संलग्न रहे, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा। और ये दोनों महाजन भी हैं, स्वयंभुव मनु और नारद मुनि, जो द्वादश महाजन हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो तत्वतः जानते हैं भगवान को, స్వయంభు నారద శంభు కుమార కపిలో మను ప్రహ్లాద జనక భీష్మ బలి భయాసకి భయం. తో యహాన్ పర్ స్వయంభు మను ఔర్ నారద ముని దోనో ఉపస్థిత హై ఔర్ దోనో కా ఉపదేశ అలగ్ అలగ్ హై. తో ఇస్ స్థితి మే ప్రియవ్రత కో క్యా కర్నా చాహియే, वो कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं. तो इसी स्थिति में ब्रह्मा जी का आगमन हुआ. ब्रह्मा जी को यहाँ भगवान कहा गया, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं. तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो मह्यंत यत सुरय. तो सर्वप्रथम इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान का ध्यान किया था, जिन भगवान को उन्होंने देखा नहीं था. ये सृष्टि के प्रथम जीव थे, चारों ओर अंधकार दर्शन कर रहे थे ब्रह्मा जी. उस स्थिति में भगवान ने आज्ञा दी, तब दो अक्षर वाला शब्द सुनाई पड़ा. तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए, हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे, जिन भगवान को उन्होंने देखा तक नहीं, उनके संबंध में कोई धारणा नहीं है, किंतु वो जानते हैं कि हमारा कोई प्रभु है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और जो मुझे अब आदेश दे रहे हैं. तो उस अदृश्य भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश प्रदान किया. तो ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ज्ञान उपदेश प्राप्त हुए. ये ब्रह्मा जी का सौभाग्य है, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था, इसलिए भगवान उनके हृदय में विराजमान होकर उनको ज्ञान उपदेश उन्होंने प्रदान किया. और ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में सारे वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन सभी का दर्शन किया अपने हृदय में भगवान के कृपा से. तो ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान के आदेश को पालन करते हुए इस सृष्टि का कार्य करते हैं. ब्रह्मा जी यद्यपि भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, द्वादश महाजनों में अन्यतम है, फिर भी भगवान की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हुए वो सृष्टि का कार्य करते हैं, सृष्टि का देखभाल करते हैं. तो ब्रह्मा जी को भगवान की आज्ञा से ये सब करना पड़ रहा है. तो कैसे विभिन्न लोकों की सृष्टि होगी, कैसे जीवों की सृष्टि होगी, ब्रह्मा जी इसकी व्यवस्था करते हैं. तो वही ब्रह्मा जी जब अब महाराज प्रियव्रत को राज्य संभालने की आवश्यकता आ पड़ी है, और महाराज प्रियव्रत द्विधा में है, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, किंतु आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी इच्छा नहीं, वो नारद मुनि की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं. तो इस स्थिति में निर्णय कौन करेगा? प्रियव्रत तो नहीं कर सकते, और ये दोनों महाजन अलग अलग निर्देश दे रहे हैं. तो इस स्थिति में कोई उनसे अधिक बड़े अधिकारी की आवश्यकता है, जो आकर कहें कि उनको क्या करना चाहिए. इसलिए महाराज प्रियव्रत की द्विधा को मिटाने के लिए, संशय को मिटाने के लिए ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए, जो सृष्टि के प्रथम जीव और द्वादश महाजनों में अन्य थे. प्रथम महाजन हम कह सकते हैं, और उनके साथ साथ शिवजी भी आए हुए हैं, वो और एक महाजन है, शिवजी भी एक महाजन है. जो धर्म के तत्व को जानते हैं। और केवल ब्रह्मा जी के साथ शिव जी नहीं, और बहुत सारे मुनि ऋषि भी आए हुए। तो जब ब्रह्मा जी आकर वहां पर उपस्थित हुए तो नारद मुनि ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं, हंस वाहन में ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो नारद मुनि, स्वयंभू मनु, महाराज प्रियव्रत सभी खड़े होकर ब्रह्मा जी का सम्मान किया। तो नारद मुनि ने स्वयं ब्रह्मा जी की पूजा की, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद मुनि के पिताजी हैं और गुरु भी दोनों। नारद मुनि ने ज्ञान उपदेश ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, तो इसलिए ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की पूजा करना, उनका उनका सम्मान करना। तो नारद मुनि ने उनकी पूजा की और ब्रह्मा जी की स्तुति की। अब ब्रह्मा जी नारद मुनि की पूजा से संतुष्ट होकर वो स्मित हास्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के स्मित हास्य करने का कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि उनको अब एक ऐसा आदेश देना पड़ रहा है जिसको सुनकर हो सकता है कि नारद मुनि और प्रियव्रत दोनों ये संतुष्ट नहीं हों, क्योंकि प्रियव्रत चाह रहे हैं कि भगवान की सेवा में संलग्न रहे और नारद मुनि वही उपदेश दे रहे हैं और उनका कार्य भी यही है। नारद मुनि कोई गलत उपदेश नहीं दे रहे, किंतु ब्रह्मा जी उनके उपदेश से कुछ भिन्न उपदेश देने जा रहे हैं, इसलिए नारद मुनि की ओर देखकर स्मित हास्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और अब संबोधित कर रहे हैं महाराज प्रियव्रत को, तो कहते हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने कहा, जो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निबोध ताते तात इदंग रीतं ब्रवीम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तात, हे वत्स, महाराज प्रियव्रत को तात संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जिसमें आंतरिकता का भाव होता है। हे तात, हे वत्स, हे पुत्र, इसमें आंतरिकता का भाव है, जैसे पिता पुत्र को संबोधित कर रहा है। तो पिता जिस प्रकार पुत्र का मंगलाकांक्षी होता है, कभी कभी पुत्र की इच्छा के विरुद्ध पिता उपदेश दे सकते हैं, किंतु पिता का उद्देश्य होता है पुत्र का, पुत्र की मंगल कामना करना। पिता कभी पुत्र का शत्रु नहीं बन सकता, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को तात पुत्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं। और ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं, ऐसा उपदेश देने जा रहे हैं जो प्रियव्रत को अच्छा नहीं लगेगा। और जब प्रियव्रत को अच्छा नहीं लगेगा तो प्रियव्रत क्या सोचेंगे, ये ब्रह्मा जी मेरे शत्रु है, मैं कुछ और करना चाह रहा था, भगवान की सेवा करना चाह रहा था, ये आकर मुझे उपदेश दिए, मुझे फिर संसार में जाना पड़ेगा, तो ये मेरे शत्रु का काम कर रहे हैं, भगवान से हमारा ध्यान हटाकर संसार में डाल रहे हैं, तो ये मेरा शत्रु है, ऐसा सोच सकते हैं महाराज प्रियव्रत। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी ने पहले से ही महाराज प्रियव्रत को संबोधित किया कि हे पुत्र, इसका अर्थ क्या है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मंगल कामना करता हूँ, इसलिए तुम निबोध, तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। और निबोध में और एक तात्पर्य है कि केवल ध्यान पूर्वक सुनने का अर्थ क्या है कि तुम सुनो और उस पर विचार भी करो। गृणन्ति, तो ये विचार करना है, केवल सुनना नहीं। कभी कभी लोग सुनते हैं, इस कान में सुनते हैं, दूसरे कान में निकल देते हैं। तो ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे हैं कि केवल सुनो, तुम विचार करो इन बातों पर, जो सुन रहे हो उन पर विचार करो, निबोध। और फिर कह रहे हैं कि बस तुम ध्यान पूर्वक सुनो और उस पर विचार करो, मैं जो कहने जा रहा हूँ और क्या कहने जा रहा हूँ, नारितं ब्रवीम, मैं जो कहने जा रहा हूँ ये कोई मिथ्या वाक्य नहीं है। तो प्रियव्रत सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी अपने मन से बोल दिया उन्होंने, तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कोई मिथ्या नहीं कह रहा, या कुछ मन में आया इसलिए बोल दिया, ये बात भी नहीं। कहते हैं रितं ब्रवीम, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य बात कह रहा हूँ। तो सत्य बात क्या है, क्योंकि जो परम सत्य का आदेश है वही सत्य हो सकता है। हमारे आदेश में, हमारे विचार में कहीं भ्रम उत्पन्न हो सकता है, कहीं त्रुटि हो सकती है, किंतु भगवान के आदेश में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, उनके आदेश पर कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परम सत्य का आदेश परम सत्य ही होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। चाहे संसार में व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना बड़ा पदवी क्यों प्राप्त ना हो, वो भगवान के आदेश को लंघन नहीं कर सकते, किसमें यह शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी में भी वो शक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम जीव। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सत्य ही मैं कहने जा रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी जो कहने जा रहे हैं अपने मन से कहने नहीं जा रहे हैं, जो उपदेश महाराज प्रियव्रत को देने जा रहे हैं ये ब्रह्मा जी का अपना उपदेश नहीं है। तो जो भक्त भगवान का जितना अधिक निकट है वो भगवान के उद्देश्य को समझ सकता है, और भगवान के निकटतम होने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को पूर्ण शुद्ध करना चाहिए। जिसका हृदय जितना अधिक शुद्ध है वो व्यक्ति भगवान का वो उतना अधिक निकटतम हो सकता है। यदि हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध है तो हम भगवान के समीप ही रहेंगे, भगवान को अपने हृदय में धारण करेंगे। किंतु हृदय संपूर्ण शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध हृदय में भगवान को हम कैसे धारण कर सकते हैं। और ये हृदय अशुद्ध कैसे होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ईर्ष्या से हमारा हृदय भरा रहता है, इसलिए हृदय अशुद्ध। और जब हृदय में काम वासना है लोभ है, मत्सर्य है, अहंकार है, तो ये भगवान उस हृदय में बैठ नहीं सकते, वो व्यक्ति भगवान का निकटतम नहीं हो सकता। और जिसका हृदय इससे मुक्त है, शुद्ध है, उसके हृदय में भगवान निवास कर सकते। तो ब्रह्मा जी जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, भगवान को हृदय में धारण कर रहे हैं, जिनके हृदय में भगवान ने बैठ करके उनको दर्शन भी दिया है, ब्रह्मा जी उनको उपदेश दिया है, तो ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान के आदेश को अब दोहरा रहे हैं। तो कह इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं। रितं ब्रवीम मासो इतुम देवंग हर्ष अप्रमेयम हे वत्स हे पुत्र प्रियव्रत, तुम उस भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखना कि संसार में व्यक्ति आता है किस लिए आता है, भौतिक शरीर धारण करता है क्योंकि भगवान के प्रति उसका ईर्ष्या भाव, वो सोचता है कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, सभी लोग मेरी सेवा करें, मैं भोग करूं, इसलिए भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है मेरी सेवा करना नहीं चाहते हो, स्वयं भोग करना चाहते हो, जाओ भौतिक संसार में और भौतिक शरीर धारण करो और देखो तुम भोग कर सकते हो या नहीं। तो भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण हम लोग भौतिक संसार में आए हैं और भौतिक शरीर धारण किए हैं। तो जब तक इस भाव में हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हृदय से इस असूया भाव ईर्ष्या भाव को हम निकाल नहीं देंगे, क्योंकि हम भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं इसलिए दूसरे प्राणियों के प्रति भी उसी ईर्ष्या भाव को रखते हैं। जब हृदय से ईर्ष्या भाव को निकाल देंगे, शुद्ध कर देंगे और भगवान के हृदय में धारण करेंगे तो किसी भी प्राणी के प्रति वो ईर्ष्या भाव नहीं रहे। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स, तुम परम पुरुष भगवान जो अप्रमेय हैं, जिनको हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते और उनकी शक्ति को हम भौतिक बुद्धि से माप नहीं सकते कि भगवान की कितनी शक्ति है, वो अप्रमेय, तो इसलिए वो भगवान के प्रति कोई कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना, क्योंकि भगवान को जानना ये सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे अक्षर ज्ञान से परे हैं, अधोक्षर हैं। और यही कारण है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सर्वं, कि जो मेरे जन्म और कर्म को तत्त्वतः जानता है, तो तत्त्वतः जानना ये परम आवश्यक है। हम भौतिक बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। तो इस भगवान को जानना, तत्त्वतः जानना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान अप्रमेय है तो वो ईर्ष्या के योग्य नहीं है। कोई भी प्राणी भगवान के प्रति ईर्ष्या उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे प्राणियों की सृष्टि भगवान से हुई है, भगवान ही हमारे परम पिता हैं। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सारे जगत के पिता माता धाता पितामह सब कुछ हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अपने पिता के प्रति, अपने पालक के प्रति ईर्ष्या भाव रखना ये शत्रु का कार्य हो जाता है, जैसे असुर लोग करते हैं, वो भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। किंतु भक्त लोग ऐसा नहीं सोच सकते, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को कह रहे हैं कि हे वत्स, उस भगवान के प्रति कभी भी ईर्षा भाव मत रख। वयं भवस्ते ततएव महर्षि बहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्ट। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति ईर्षा भाव मत रखो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान का जो आदेश, उसी आदेश को मैं अब तुम्हें कहने जा रहा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का जो आदेश प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए, मैं उसी आदेश को दोहरा रहा, इसलिए ना तो मेरे प्रति तुम ईर्ष्या भाव रखो कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम चाहते तो भक्ति करने के लिए मैं तुम्हें संसार में ले रहा हूँ, राजकाज संभालने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना शत्रु मत मानो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ये भगवान का आदेश है, इसलिए मुझे शत्रु मत मानो और भगवान को भी अपना शत्रु मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारे आराध्य हैं, तुम जिनकी आराधना कर रहे हो उन्हीं का आदेश मैं तुम्हें दोहरा रहा हूँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बस केवल तुम नहीं, मैं केवल तुम्हें भगवान का आदेश पालन करने के लिए नहीं कह रहा, हम सभी, मैं स्वयं ब्रह्मा, ये शिव जी जो पास में खड़े थे ब्रह्मा जी के, और तुम्हारे तात, यहाँ बताया गया भव ते तात, तात तुम्हारे जो पिता हैं स्वयंभुव मन, भव अर्थात शिव जी, तो शिव जी और तुम्हारे पिता स्वयंभुव मन और ऐसा महर्षि, और ये जो महर्षि नारद जी खड़े हैं उनकी ओर देख करके कह रहे हैं ब्रह्मा जी। स्मित हास्य करते हुए कह रहे हैं कि जो नारद जी हैं, तो हम चारों, ये चार महाजन हैं धर्म के तत्व के ज्ञाता, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम चारों उन्हीं भगवान के आदेश को अपने मस्तक में धारण करते हुए उनका पालन हर समय कर रहे हैं, हम एक पल भी भगवान के आदेश से अलग नहीं हो सकते, हमारी वो शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम भगवान के आदेश का उल्लंघन कर दें, यद्यपि मैं ब्रह्मा सबसे उच्चतम पदवी पद पर बैठा हुआ, सृष्टि का उच्चतम पद ब्रह्मा पद और उच्चतम लोक ब्रह्मलोक है, फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं भगवान के आदेश का उल्लंघन कर सकूं, और ना तो शिव जी कर सकते हैं, ना तुम्हारे पिता स्वयंभुव मनु कर सकते हैं, ना तुम्हारे गुरु नारद मुनि कर सकते हैं, इसलिए हम लोग भगवान के आदेश के वशीभूत हैं। यहाँ ब्रह्मा जी विवश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विवश, हम भगवान के आदेश पालन करने के लिए विवश हैं, अर्थात हमें कोई शक्ति नहीं है आदेश को टालने के लिए, इसलिए हम बाध्य हैं भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, हम अन्यथा नहीं कर सकते। तो बहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम, जो भगवान का दिष्टम जो आदेश है, ये हम सभी के लिए शिरोधारी मस्तक में धारण करने योग्य, हम उसको टाल नहीं सकते, इसलिए हे प्रियव्रत, यद्यपि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सभी लोग, महाजन लोग भी भगवान की सेवा करने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु यहाँ पर समय की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बात सीखने की है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है हम लोगों के लिए कि हम लोग गुरु के आदेश से हम चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, किंतु यदि समय की आवश्यकता हो और हमारे गुरु वर्गों में जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान के आदेश को हमें सुनाते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना है कि भगवान की सेवा को छोड़कर जाकर राजकाज संभालना है या कहीं मैनेजर बनना है, मंदिर चलाना है, हम लोग चाहते हैं कि हम सब कुछ त्याग करके केवल भगवान की सेवा करें, सन्यासी बने, प्रचार करें भगवान का, बहुत बड़ी अच्छी बात है। किंतु यदि समय की आवश्यकता है और हमारे गुरुजन लोग हमें आदेश देते हैं कि नहीं तुम जाकर वहाँ मंदिर चलाओ, तो हमें उस आदेश को पालन करना पड़ेगा, जैसे महाराज प्रियव्रत को करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया उनको राजकाज चलाने के लिए, तो महाराज प्रियव्रत उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सके, यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी ब्रह्मा जी का आदेश और भगवान का आदेश उनके लिए सिरोधार्य था। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम चाहते हैं कुछ करने के लिए किंतु हमारे गुरुजन लोग कुछ अलग आदेश देते हैं, तो उस समय हमारी इच्छा को त्याग करके हमें गुरुजनों की इच्छा का पालन करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, यही श्रेष्ठ रीति है और यही आदर्श इस श्लोक में हम प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, निताय गौर प्रभानंदे हरी।